हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कौन? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट नीता दबई जी, जिनके साथ हम अक्सर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते हैं। चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, उनके जो सीरियस इश्यूज हैं उन पर हम अक्सर बातें करते हैं। तो आज हम एक और सीरियस इश्यू को यहाँ पर लेके आए हैं और वो इश्यू है ईव टीजिंग। जी हाँ, महिलाएं, कहा जाता है कि अब उन्हें बराबरी का दर्जा मिल गया है समाज में, लेकिन उनकी सुरक्षा पर सवाल या निशान और प्रश्न चिन्ह समय समय पर लगते रहे हैं। उनके साथ हादसे आज भी दिल्ली मेट्रो सिटी में होते हैं, चाहे वो NCR एरिया में हो, चाहे वो पॉश इलाके में हो या फिर डाउनटाउन एरिया में हो, लेकिन महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। चाहे वो रेप केस हो या फिर ईव टीजिंग, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ चुटकियों में हो जाती हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे नीता दबई जी से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन स्टूडेंट्स भी, जो कि मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की हैं। उनमें से एक का नाम है शिंजनी जैन, एक है नेहा बलियान और रीटा। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और नीता मैम, आपका तो स्पेशल स्वागत है।
थैंक यू किरण। और जैसे आपने कहा, एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस भयानक चीज़ के लिए, ईव टीजिंग के लिए। और आज हम यही डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं किरण, कि ईव टीजिंग हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में एक स्पेशल, जिसको कहते हैं क्राइम्स में स्पेशल इशू है
जी।
और ये ईव टीजिंग की का इशू दुनिया भर में, विश्व भर में कोई मायने नहीं रखता है। बड़ा स्ट्रेंज है ये, बड़ी स्ट्रेंज बात है ये। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आज इतना डेंजरस प्रोपोर्शन ले रहा है कि लड़कियों का मोलेस्टेशन हो जाता है, रेप हो जाता है। आजकल लड़कियां बाहर निकल रही हैं अपने घरों से, हॉस्टल्स में रहती हैं, अकेली रहती हैं, बिना पेरेंटल सुपरविजन और प्रोटेक्शन के। तो आज हम अपने इन तीन फ्रेंड से किरण यही डिस्कस करेंगे कि ईव टीजिंग आखिर होती क्यों है,
क्यों होती है और हमारे इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है क्यों ये वर्ड इतना पॉपुलर होता जा रहा है, ईव टीजिंग। बल्कि ये सब हरकतें जो हैं वो दूसरे देशों में भी शायद होती हैं, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये।
बिल्कुल ये
अपने
सही
इंडिया
है।
पाकिस्तान जो हमारे कंट्रीज हैं आसपास के, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर इशू है। तो क्या रीजन है, हम इसे भी बात करेंगे नीता जी। तो एक एक करके हम थोड़ा इन बच्चों से जरा पूछते हैं कि ईव टीजिंग का क्या मतलब ये समझती हैं,
क्या मतलब समझती हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके मायने में ईव टीजिंग जो होती है वो क्यों होती है।
जी बिल्कुल।
सो वी स्टार्ट विद शिंजनी।
वेल, मेरे हिसाब से ईव टीजिंग इसका मतलब है लड़की की परमिशन के बिना, जब लड़के उन्हें कुछ भी कह जाते हैं या वो लड़की, मतलब ईव टीजिंग का ऑल राउंड मीनिंग एक ये हो गया है कि सुंदरता एक अभिशाप। जैसे कि आजकल हमारे सीरियल्स चलते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर सी लड़की है, उसकी माँ उसको काला रंग राख पोत के रखती है, जिससे कोई लड़का उसको देखे तो उसका दिल ना फिसले उस पर, उनका उसको वो हैरस ना करे। सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए उसको बदसूरत बना के रखती है। तो ईव टीजिंग की वजह से सुंदरता एक अभिशाप बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे लड़की अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से किसी जगह पे जाके, अगर उसका मन कर रहा है आज गोलगप्पे खाने का, पर गोलगप्पा जॉइंट एक उस जगह पे है जहाँ पे लड़के पूरे टाइम शाम को घूमते रहते हैं, तो अगर उसका शाम को गोलगप्पे खाने जाने हैं तो उसको साथ में अपने किसी भाई को, अपने किसी फ्रेंड को या अपनी मम्मी को के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस जगह को सेफ नहीं समझती।
यानी कि लड़कियों की जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है,
बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। रात को 5 बजे, मतलब आज सर्दियों का टाइम है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, उस टाइम फोन आने लग जाता है घर से कि बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। लड़के बल्कि रात को 9-9 बजे बाहर घूम रहे होते हैं, कोई बॉदर भी नहीं करता कि ठीक है समय रहते वो लोग घर आ जाएंगे। लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती, अगर वो गर्मियों में खुले कपड़े पहनना चाहें जिससे गर्मी कम लगे, तो उनको सोच समझ के पहनना पड़ता है कि मैं पूरे कपड़े पहन के बसों में ट्रैवल करूं जिससे कोई मुझे छेड़ ना दे।
नीता जी, बहुत सीरियस इशू है ये।
बिल्कुल, बहुत सीरियस इशू है। तो शिंजनी का कहना है कि एक तो सबसे पहले तो एक तो फ्रीडम जो है वो नहीं मिलती है लड़कियों को, और फ्रीडम और इसने एक बहुत बड़ी बात कही है कि खूबसूरती
जो है वो ना
एक अभिशाप हो गई है। तो क्या लड़कियां खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, या हमें खूबसूरती से
परहेज
रखना चाहिए,
या फिर उसे छुपाना चाहिए। जो इसने एक एग्जांपल भी दिया, आजकल एक सीरियल भी आ रहा है कलर्स पे।
देखो किरण, कितने ये सीरियल्स कितना ईव टीजिंग के फेवर में है कि भाई ईव टीजिंग ना हो तो उसके लिए आपने ये किया, तो हमारे सीरियल्स में भी ये इशू एक मेरे हिसाब से एक नॉट अ वेरी राइट वे इट इज शोइंग।
जहाँ तक लग रहा है जो आपने इन्होंने बात कही है उसमें यही है कि अगर आपने ईव टीज से बचना है तो अपनी खूबसूरती को छुपा लो। वहाँ पे कोई अगेंस्ट में आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है और किस तरह से आपको अपने आप को इंपावर करना है, इसको थोड़ा सा उन लोगों ने थोड़ा पीछे किया है, लेकिन हमें आज यही यहाँ पे डिस्कशन करना है,
यही डिस्कस करना है कि
हम लोगों को इग्नोर करना है, हम लोगों को दबके रहना है, या फिर हम अपने आप को इंपावर करें तो किस तरह से करें। हम इसी टॉपिक को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं और हमारी जो नेक्स्ट है वो है नेहा बलिहाल। नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि ईव टीजिंग क्या है, तुम्हारी नज़र में क्यों होती है?
ईव टीजिंग मेरी नज़र में भी यही है जब कोई लड़का किसी लड़की पे कोई गंदा कमेंट पास करता है या कोई अश्लील हरकतें भी होती हैं लड़कियों के साथ, तो मेरी नज़र में ईव टीजिंग वही है। और जहाँ तक जैसे डॉक्टर नीता ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा है, बाहर लोग इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते, ये इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि लड़कियों को थोड़ा शुरू से ही, मतलब कहते हैं रूढ़ीवादी सोच है, तो उनको शुरू से ही कहा जाता है बेटा नहीं तुम नहीं, भाई को आगे रखा जाता है, लड़कियों को शुरू से सिखाया जाता है सब कुछ। इंडिया की संस्कृति है कि उसमें मतलब
रिस्ट्रिक्शंस
है, इस चीज के अगेंस्ट भी लोग आते हैं बाहर को, यहाँ ठीक है कल को किसी लड़की को चलेगा ठीक है हाँ हंस के वो भी चल देती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लड़की अपने दिमाग में उस बात को बिठाती है उसने मुझे ऐसा कहा। कोई अगर बात ज्यादा होती है तो फिर लड़की, मतलब अगर जैसे कोई MMS केस है उसमें हम लड़की को ये हो गया कि अगर मैं सबने MMS देख लिया मैं बाहर जाऊंगा तो मुझ पर कमेंट्स होंगे, मतलब सुसाइड तक को अपना लेती हैं, तो ये बहुत सीरियस टॉपिक इंडिया और इसमें संस्कृति की वजह से ही है।
तो इसका मतलब नेहा कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल रूट्स जो हैं वो इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि ईव टीजिंग करें, क्योंकि जैसे इसने कहा कि लड़कियों को बहुत दबा के रखा जाता है, लड़कियों का एक्सपोजर नहीं होता है, और एक जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में, तो वो लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम देती है, तो
और लड़कियों को कम
कम, और जो जब लड़कियां जिस तरह से आजकल आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, जर्नलिस्ट बन रही हैं, किसी भी टाइम रात को सुबह सब अपना काम कर रही हैं, तो शायद ये चीज़, नेहा वुड यू अग्री कि ये चीज़ शायद इस मेल सोसाइटी को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं है?
बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी नीता मैम कि जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी की हम बात करते हैं और वहाँ पर जब महिला का जो रूप उभर कर आ रहा है और वो हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि हम लोग किसी को इसीलिए भी परेशान करते हैं कि वो इतना ऊपर कैसे चढ़ रही है, उसको क्यों हमसे ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। ऑफिस प्लेस में भी अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो हम उसको नीचा दिखाने के लिए या फिर उसको उसकी इमेज को बिगाड़ने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि क्यों उसको पोस्ट हमसे ज़्यादा मिली, क्यों उसकी प्रमोशन हुई हमारी प्रमोशन नहीं हुई। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल को ईगो प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल तय बात है। दूसरी चीज़, एक इसने जब कहा कि हमारी जो संस्कृति है, मुझे उससे ये लगता है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें शायद लड़कियों को इतना दबा के रखते हैं कि लड़के लड़के जो है आपस में इतना खुल ही नहीं पाते कि उन लोगों को एक दूसरे की मतलब ज़्यादा क्यूरोसिटी उन लोगों में पैदा हो जाती है।
बिल्कुल सही कहा किरण, और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर ये शायद एक जो लड़कों लड़कियों में क्यूरियोसिटी होती है
वाली चीज़
एक दूसरे के बीच में, और डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है,
वो नहीं है,
दे आर वेरी ओपन, दे टॉक टू ईच अदर। और यहाँ शायद ये भी होता है कि कोई किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है किसी में कि वो कमेंट करता है लड़की पे और वो लड़की बहुत कतराती है कि मेरे ऊपर कमेंट कर दिया, तो उसे बुरा भी लगता है ना। रीटा, व्हाट डू यू थिंक?
मेरे हिसाब से ईव टीजिंग जैसे शाम को लड़कियों का छेड़ना, लड़कियों को छेड़ना होता है, और ये ज़्यादातर शाम को होता है क्योंकि शाम को लड़कियाँ ऑफिस से आती हैं, घर आती हैं, तो बॉयज़, और सेकेंडली कि शाम को थोड़ा अंधेरा होता है तो उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए ईव टीजिंग हमेशा शाम को करते हैं।
ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि यही जो शाम की बात है, रात की बात है, रात के अंधेरे में, शाम के अंधेरे में शायद वो सोचता है जो लड़का या लड़के, वो सोचते हैं कि
वी कैन हाइड
इजीली। बिल्कुल सही कहा किरण, वी कैन हाइड इजीली।
अगर 5-6 लड़के खड़े हुए हैं उसमें से एक लड़का कमेंट पास कर देता है तो लड़की नहीं पहचान पाएगी कि किसने कमेंट पास किया है, अगर वही काम दिन में होता है तो वो इजीली जान सकती है कि हाँ किसने किया है।
छुपाने के लिए भी ये चीजें होती हैं। और
किरण, और क्या रीजंस हो सकते हैं लड़कों को छेड़ने के लिए, क्या सोच सकते हो?
नेहा हमें बताएगी इसके बारे में।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग हर बारी लड़के को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत हद तक यहाँ कई बार लड़कियाँ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे अब एक लड़की जा रही है, वो ड्रेस्ड अप है, अच्छी तरह है, उसने कॉन्फिडेंट, मतलब एक लड़का है साइड से गया है, स्मार्ट है वो भी, बट उसने कोई कमेंट पास नहीं करा, लड़की को अंदर से ये होगा कि यार मुझे कमेंट पास नहीं किया, मुझे मुड़के नहीं देखा, तो मतलब उसको इनसिक्योरिटी सी फील होगी कि मैं अच्छी नहीं लग रही,
तैयार होने में कोई कमी रह गई.
एग्जैक्टली व्हाट शिंजी सेड. तो मतलब लड़कों को, लड़कियों को भी कहीं से होता है कि लड़का मुझ पे कमेंट पास करे. कीपिंग दैट साइड, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती. कई लड़कियां होती है जो अपने आप को एक्सपोज करती हैं गर्ल्स को, वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एंड ऑल. तो उसको भी अगर साइड में रखा जाए, एक बात और आती है, वन साइडेड लव, जो बहुत, मतलब मेरे को लगता है बहुत बड़ा वो है. अभी हमने रिसेंटली दिल्ली में केस देखा है, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, शी रिफ्यूज. उसके बाद लड़के ने लड़की को एट द टाइम गन से शूट करा, वो तो उसको क्राउड ने पकड़ लिया. क्या था वो भी एक फ्रस्ट्रेशन थी जो लड़की पे निकाली गई. कब तक लड़कियां बर्दाश्त करें?
तो नेहा ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि ईव टीजिंग का एक कारण एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है लड़कियों का.
अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है जिसमें कि शायद उन लोगों को ये फील होता है कि अगर लड़के ने हमें नहीं देखा तो हम लोग सुंदर नहीं लग रहे, तो शायद उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो शायद नीचे गिर जाता है.
मतलब ईव टीजिंग का ये तो किरण एक बहुत अच्छी, मतलब एक तो पॉजिटिव साइड हो गया कि अगर किसी ने कमेंट किया है आपके ऊपर तो आप बहुत ब्यूटीफुल है. नहीं, ये एक जो धारणा है,
यहाँ पर हम नेता मैम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं,
हाँ,
और एक आप किसी को टीज करते हैं. दोनों चीजों में बहुत फर्क है. इफ समबडी इज सेइंग दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे, ओके, इट इज एन अप्रिसिएशन. लेकिन कोई आपके लिए गंदे वर्ड इस्तेमाल करता है, माल जैसे वर्ड इस्तेमाल करता है, टोटा जैसे वर्ड इस्तेमाल करता है, जो कि नॉर्मली आजकल हमारी सोसाइटी में यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो टीज हो जाता है.
दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट.
हाँ, अप्रोच की बात है.
शी इज वेरी राइट, शिंजनी सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कमेंट एंड अ कॉम्प्लीमेंट
एंड अ कॉम्प्लीमेंट.
सो यस, सो ईव टीजिंग इज जस्ट लाइक अ कमेंट. एंड शायद हमारी जो लड़कियां हैं वो इतनी यूज्ड टू हो जाती हैं कि वो उनको लगता है कि आज तो इसने किसी ने कमेंट ही नहीं किया, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई हूँ. सो ये
इतना यूज्ड हो गई कि कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में जो डिफरेंस है उसको नहीं
मिक्स कर दिया गया.
बिल्कुल.
यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ.
बोलिए.
कि जैसे हमें कोई टीज करता है तो हम अपने पेरेंट्स से बताते, तो पेरेंट्स नॉर्मली कहते बेटा इग्नोर कर दो उस चीज को. तो सपोज हमें एक लड़का हर दिन टीज करता है, हम उसे 2 months, 3 months, 4 months से इग्नोर करते चले जाते हैं, तो लड़का सोचता है ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, तो मतलब इसकी हाँ है, वो भी चाहती है कि मुझे टीज करें, तो
गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं.
तो उस कंडीशन में वो सब उसको प्रपोज करता है, तो लड़की मना कर देती है, तो मना करने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है, उस पर एसिड फेंक देता है या गलत उसके साथ करता है, तो उस कंडीशन में लड़की क्या करे, कब तक इग्नोर करे वो उसको?
बहुत अच्छा सवाल किया रीजा ने. और मैं सोचती हूँ कि हाँ, किरण हम इनसे ही पूछें कि इनमें से
कितने लोग अवेयर हैं कि क्या करना चाहिए. शिंजनी से हम शुरू करते हैं. शिंजनी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, या फिर तुम टीवी चैनल्स या इनसे, या फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स, कुछ भी आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हुई अपने पेरेंट्स की तरफ से?
आप कैसे रिएक्ट करते अगर किसी ने इस तरह से आपके साथ किया होता?
एक वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर होता है जिसको अपने स्पीड डायल पे रखना चाहिए मेरे हिसाब से. दूसरा, हमें अपने पेरेंट्स से खुल के बात करनी चाहिए. जैसे कि कई बार ये होता है लड़कियां शर्मा जाती हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, अब अगर मैंने किसी को बता दिया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा. वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बात किसी को बता दूंगी तो उनकी सोच, उनकी नजरें मेरी तरफ क्या हो जाएंगी. इसलिए वो कई बार डर के अपने माँ बाप से बात तक शेयर नहीं करती कि पता नहीं अगर किसी पड़ोसी ने छेड़ दिया, अगले तो माँ बाप लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, पर बाद में पूरी सोसाइटी में उस लड़की पे क्वेश्चन उठेगा. क्वेश्चन लड़के पे नहीं उठेगा कि लड़के ने छेड़ा, क्वेश्चन लड़की पे उठेगा इस लड़की को छेड़ा गया. तो
इसका मतलब कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है या लड़की को के बारे में कमेंट किया जाता है कि वो ऐसी है, तो हमारी सोसाइटी में ये परसीव होता है कि वो लड़की गलत है. और जैसा शिंजनी ने कहा रीटा के जवाब में कि हमारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से बहुत खुलकर कम्युनिकेट करना चाहिए.
कुछ जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उनको हम स्पीड डायलिंग में भी रखें, वो एक सेफ्टी हो सकती है.
ये बहुत एक बढ़िया सेफ्टी मेजर है
मेरे हिसाब से. जैसे भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बात सिर्फ क्यूरोसिटी की है, उनको जानना है कि लड़कियों के लाइफ में ऐसा क्या होता है. मतलब कि जैसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, जब हम छोटे छोटे होते हैं, जब पर्बिटी की एज होती है स्टैंडर्ड 6 से, तब लड़कों को भी नॉलेज नहीं होती है कि फीमेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है. उस टाइम हमारे स्कूल में आजकल स्टार्ट हो गया है टीनेज काउंसलिंग, जहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है लड़कियाँ शेयर करती हैं. बाकी अगर किसी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जब शुरू होती हैं, तब कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है लड़की के साथ, तो पूरी क्लास में हर कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है. और बिकॉज गाइस डोंट नो व्हाट इट इज एक्चुअली. सो मेरे हिसाब से अगर हमें ईव टीजिंग कम करनी है, अगर जड़ से तो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें कदम मतलब कम भी करनी है, तो बेसिकली हमें फीमेल और मेल को बिल्कुल पोल्स अपार्ट ना रखने के बजाय हमें कुछ ऐसे डिस्कशंस करने चाहिए, हमें पूरी नॉलेज देनी चाहिए जिससे उनको करेक्ट नॉलेज मिले और वो जबरदस्ती की, वो कहते हैं ना कि एक नॉलेज कहीं से मिल रही है, हेयर एंड देयर जो नॉलेज होती है वो ज्यादा गलत होती है, इससे बेटर हमें उनको प्रॉपर नॉलेज दे देनी चाहिए सबको, और हमें इस बात पे चुप नहीं रहना चाहिए। हर कोई आज कल जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करता है तो यार चुप हो जा इस बारे में मत बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुल के बताना चाहिए कि ये है क्या।
किरण, शी हैज ब्रॉट आउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये चीजें हमें स्कूल लेवल से डिस्कस करनी चाहिए,
स्कूल लेवल से डिस्कस
है ना। और ये एक जो मैं आपको बता दूं,
स्टार्टिंग पॉइंट है और हम वहीं पर उसे इग्नोर कर देते हैं और वहां से जो शाय फीलिंग है वो हमारे साथ बिल्कुल आ जाती है, और जब उसको हटाने की हम बात करते हैं एडल्ट होकर तो फिर वो दूर नहीं होती।
और कई मिसकंसेप्शन जैसे इसने कहा लड़कों में होते हैं लड़कियों के बारे में, लड़कियों में होते हैं लड़कों के बारे में, तो वो चीजें अगर बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो, काउंसलिंग हो इकट्ठे बिठा के, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ की, तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट शिंजनी ने बताया है एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट हर। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक,
वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और जहाँ पर आपने ये बात कही कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है ये ईव टीजिंग वर्ड इतना पॉपुलर है और यहाँ पे ही इशू है, तो यहीं पर ही हम लोग जो है सेक्स एजुकेशन को रोकते हैं।
बिल्कुल,
अदरवाइज जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत ही इजीली दी जाती है, साथ में बैठा के काउंसलिंग की जाती है, शायद इसीलिए वहाँ पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
क्योंकि जब भी किसी बात को छुपाने की कोशिश करती है तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अब जिस काम को करने से मना करे इंसान वही काम जाके करता है।
बिल्कुल,
तो इस ह्यूमन टेंडेंसी को हमें एक करेक्ट डायरेक्शन में ले जाके, जैसे कहते हैं ना कि सांप जैसे बिल से निकलता है उसको उसी टाइम मार देना चाहिए,
हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो उसे जाने समझे, करके भी देखें, करें जो भी आप लोगों को समझना है उसको, ठीक है, हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें अच्छी तरह प्रोवाइड करें जहाँ पे हम बैठ के उनके बैठकर एक साथ काउंसलिंग कर सकें,
जहाँ पे काफी हद तक स्कूलों में ये चीज शुरू हो भी चुकी है,
काफी
जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पे ये सब शुरू हो चुका है।
बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी राइट। एंड किरण, आई एम ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल्स, एंड जब हम जहाँ पे हम ये सब बातें करते हैं, और एक चीज मैं फिर नेहा से पूछना चाहूंगी कि नेहा, सो व्हाट डू यू थिंक, आपकी राय में हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, लड़कियां या लड़के ईव टीजिंग के लिए? क्या लड़कियां इंस्टिगेट करती हैं और लड़के रिएक्ट करते हैं, या लड़के एक्शन करते हैं और लड़कियां रिएक्ट करती हैं? वुड यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम पूछा जाए तो क्या आप क्या कहोगे कि क्या लड़कियां रिस्पॉन्सिबल हैं?
रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशियो हमें बताओ जरा कि लड़की और लड़के में क्या रेशियो बनेगा।
जैसा आपने पूछा, मेरा ये मानना है कि इसमें हम ना तो लड़कों को ब्लेम कर सकते हैं ना ही लड़कियों को, हर जगह केस डिफरेंट होता है। कई जगह होता है जहाँ लड़कियाँ मतलब खुद एक्सपोज कर रही हैं लड़के को, तो लड़का आगे से बढ़ के कदम उठा रहा है। कई जगह होता है जहाँ लड़की की कोई गलती ही नहीं होती, इग्नोर कर रही है, एक हद होती है इग्नोरेंस की भी। तो हम इसमें, मेरा जो मानना है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि लड़का गलत है यहाँ पे या लड़की गलत है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या है।
तो इसका मतलब नेहा कि अगर कोई लड़की एक छोटी सी मिनी स्कर्ट पहन के जा रही है और एक लड़का उसके ऊपर कमेंट करता है या उसको जाके हैरस करता है, तो इसमें लड़की की भी गलती है और शी शुड नॉट बी वेयरिंग अ मिनी ड्रेस।
हाँ, उसमें कुछ हद तक लड़की की गलती है, जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं उनको देखना चाहिए कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में कैसे माहौल में पहन के जा रही है।
तो राइट ड्रेस एट द राइट टाइम,
एट द राइट टाइम, राइट टाइम।
इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जब हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो एक लड़की ही दूसरी लड़की को देख के कहती है कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, तो ये तो बात जेंट्स की होती है, तो जेंट्स में तो बाय नेचर होता है। तो अगर हम मिनी स्कर्ट पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, तो नॉर्मल सा है कि लड़के उन्हें टीज करेंगे। जब हम जानते हैं कि हमारे साथ ही होगा तो हम क्यों ऐसे ड्रेसेस पहने,
तो मतलब ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ये भी
अप्रोप्रिएटली यहाँ पर
इस पे मेरा ये कहना है कि जगह बहुत मायने रखती है। अगर आप बस में कहीं मिनी स्कर्ट पहन के जा रहे हैं,
एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और किस अप्रोच को लेके जा रहे हैं वो थोड़ा मायने रखता है।
मतलब DTC बस में अगर मिनी स्कर्ट पहन के चले
तो ऑब्वियसली आपको एक नहीं, आपको एक नहीं 10 नहीं पूरी बस ही छेड़ेगी।
सो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग इज वन ऑफ द सेकंड पॉइंट्स आई थिंक जो हमने डिस्कस किया है कि एक तो इग्नोर करना है और पेरेंट्स को बताना है, और ये सेकेंडली
हेल्पलाइन नंबर्स जो है अपनी स्पीड डायलिंग में रखनी है।
बट मेरा ऐसा मानना है कि इग्नोरेंस भी एक हद तक ही है। अब कब तक इग्नोर करेंगे, जब आपके सर से पानी जाएगा तो आप तब कैसे इग्नोर कर सकते हैं?
बिल्कुल,
तो यू शुड हैव अ प्लान, कुछ कदम होना चाहिए। हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल,
ओके शिंजनी हमसे कुछ कहना चाहती
है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो इस पे जब अगर हमने अपने कल्चर को जानते हैं अच्छी तरीके कि ये हमारा बाउंड्री है, हमें इस बाउंड्री में जैसा रंग वैसा ढंग। तो जैसे अगर हमारे बाउंड्री है जहाँ पे हर लेडी आप देख रहे हैं ऑफिस में सिर्फ साड़ी ही पहनती है, वहाँ पे अगर एक लेडी है वो जीन्स, टाइट फिटेड जीन्स और टाइट फिटेड टैंक टॉप पहन के आ जाए, तो ऑब्वियसली जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो उनको कुछ ना कुछ कहेंगे, ये इवेंचुअल है। तो मेरे हिसाब से तो जैसी बाउंड्रीज है अपनी बाउंड्री में हर लड़की को रहना चाहिए, तो ये फिर क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो।
और आप लोग का कहना है कि जिस जगह में आप रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, जो माहौल है उसके हिसाब से ही हमें ड्रेसअप करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हाल में एक साल पहले बैंगलोर के कॉलेज में और एक कानपुर के कॉलेज में प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन के आएंगी, तो आप मुझे बताइए कि उसके बाद बहुत रिएक्शन था प्रेस में, लड़कियां भी ने भी बहुत अपोज किया कि क्यों कोई हमें ड्रेस कोड बता रहा है। तो ये मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि क्या फिर इसका मतलब कि हमें ड्रेस कोड अपनाना चाहिए।
मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की अपने आप को स्मार्ट लुक देना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। अगर आप कहीं पे वर्क प्लेस में जा रहे हैं, अगर हो सकता है वहाँ पे और लड़कियां भी हैं, वो साड़ी वेयर कर रही हैं, सूट वेयर कर रही हैं, दे आर नॉट लुकिंग स्मार्ट इन दैट ड्रेस, ठीक है। अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते कि मैं जीन्स वेयर करके जाऊँ, आई एम कंफर्टेबल इन दैट, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम उन्हें फिर क्यों उन लड़कियों को ऐसा माइंड सेटअप रखना चाहिए कि अगर सारी साड़ियां पहन रही है तो फिर मैं भी साड़ी पहनूं? ठीक है, अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनो, लेकिन उसमें ड्रेस कोड डालने की हमें क्या जरूरत है?
की जरूरत है, हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या जरूरत है। हाँ नेहा बोलो।
मेरा ऐसा मानना है कि ड्रेस कोड कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। कल को कहीं अगर लेडी ने साड़ी पहनी है तो उसको भी कोई लड़का छेड़ सकता है।
बिल्कुल,
हम ये नहीं कहेंगे कि उसने साड़ी पहनी है और उसको तब भी छेड़ गया। जीन्स पहनी है उसको भी।
ऑन द अदर कंट्री नोट, साड़ी इज क्लेम टू बी द मोस्ट सेक्सी आउटफिट ऑन अर्थ।
Yes.
लड़कियां साड़ी में सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, जैसे यू हैव सीन दैट सॉन्ग द देसी गर्ल, मतलब प्रियंका चोपड़ा इज फ्लॉन्टिंग अ साड़ी।
तो मेरा एक्चुअली पॉइंट यही था किरण, कि इनसे यही पूछना था कि भाई कोई ड्रेस अप्रोप्रिएट होती है कि नहीं होती है, कि किसी भी ड्रेस में आप ईव टीजिंग के शिकार हो सकते हैं।
मेरा तो यही मानना है कि माहौल देखा जाता चाहिए और ड्रेस उसके अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए। अब आप कल को किसी शादी में जा रहे हो और वो इंडियन मैरिज है और लगता है आपको किसी गाँव की है, तो वहाँ ठीक है आप सूट साड़ी पहन के जाइए, ये नहीं है कि आप मिनी स्कर्ट पहन के जाओ और अपना मजाक उड़वाओ। और हाँ, कल को किसी आप मॉडर्न पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, कोई कॉकटेल पार्टी, ठीक है, आपको लगता है आप वन पीस भी पहन सकते हो, मिनी स्कर्ट भी पहन सकते हो, सब कुछ डिपेंड करता है।
ठीक है, सो नाउ किरण, आई वांट टू गो ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क देम, कि जो लड़कियां जिनको ईव टीजिंग ज्यादा होती है या जिनके ऊपर कमेंट्स ज्यादा करे जाते हैं, तो क्या वो लड़कियों के ग्रुप में या लड़कियों के ग्रुप्स में जो होती हैं या कॉलेज में, वो क्या पॉपुलर कहलाई जाती है? कि जैसी ये निकलती है तो बहुत कमेंट्स होते हैं।
आई एग्री, आई स्ट्रॉन्गली एग्री।
यस मैम, इसका बहुत फर्क।
शिंजनी एग्री,
आई टू एग्री, आई स्ट्रॉन्गली एग्री।
सो यू फील कि जो लड़कियां, जो लड़की जब से ज्यादा कमेंट कराई जाती हैं वो पॉपुलर होती हैं?
यस मैम, पॉपुलर होती है, बट उनके पॉपुलर होने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, लड़के उनसे फन चाहते हैं इसलिए वो पॉपुलर होती है। कोई उनके अंदर की जो उनकी इंटरनल ब्यूटी है वो नहीं देखता है कि वो कौन सा कोर्स कर रही है, वो कितनी ब्रेनी है, उसके पास क्या स्किल्स हैं, वो कोई नोटिस नहीं करता है। ऑल एवरीबॉडी नोटिसेस आउट ऑफ ब्यूटी।
सो व्हाट इज शी पॉपुलर इन? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप लोग ऐसी लड़की को पॉपुलर मानोगे कि नहीं?
पॉपुलर इन सेंस कि उसके कैरेक्टर पे एक सवाल है कि अगर किसी लड़की को ज्यादा ईव टीज किया जा रहा है तो इसका मतलब वो लूज कैरेक्टर है, वो लड़कों को कॉल करती है या फिर वो
अच्छी है, स्मार्ट है।
वो कहते हैं ना, वो खुद डील देती है।
नहीं, हम लड़कियों को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। बीइंग पर्सन, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, बीइंग मैं एक लड़की हूँ, मेरे पे कल को कोई कमेंट करता है तो कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं कह सकता मेरा कैरेक्टर खराब है। आई एम गुड, किसी ने कमेंट किया तो उसमें उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़कियां कॉलेज में पॉपुलर हैं वो रोड पे भी चलेंगी और कोई अनजान आदमी भी उस पे अगर कमेंट करके जाएगा तो उसको तो नहीं पता कि वो कॉलेज में पॉपुलर है, लेकिन फिर भी वो टीज करके तो चला गया, तो इसमें उसको तो नहीं पता कि उसका कैरेक्टर कैसा है। विदिन अ सेकंड यू कांट फाइंड आउट ना कि उसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं।
कि क्या सुंदर होना एक लड़की की गलती है? इसमें यहाँ ये बात आती है,
मेरा टॉपिक है।
हम लोग यही, फिर हम उसी बात पे आ गए हैं कि क्या सुंदर होना अभिशाप है। हाँ। जैसे शिंजनी ने कमेंट किया था कि नहीं, सुंदर होना अभिशाप होता है, तो ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो, है ना? डू यू थिंक किरण?
मैं इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ऐसा कि जब कोई लड़की रोड पे जा रही है तो इनफैक्ट हमने इस तरह के इंसिडेंट्स भी देखे हैं, जो लड़के होते हैं वो पीछे से आते हैं, उन्होंने लड़की की शक्ल भी नहीं देखी होती है, फिर भी वो कमेंट पास करके साइड से,
क्योंकि
केवल वो लड़की है। इवन हम एजेड वीमेंस की बात करें तो उनके साथ भी ऐसा होता है। अगर हम ट्रेन्स में, बस में जाते हैं तो इवन हमारी जो आंटी होती हैं, जो हमारी बड़ी सिस्टर्स होती हैं, जो मैरिड हैं, दो बच्चों को भी कैरी कर रही हैं, उनके साथ भी लोग करते हैं।
बिकॉज द मेल पीपल
विमेन है,
द मेल पीपल टेक, ये इंडियन मेंटालिटी है, दे टेक फीमेल एज अ टॉय.
एब्सोल्युटली राइट. होता है क्योंकि लड़कों की मेंटालिटी होती है कि एक बच्चे, पांच छह बच्चों का, लड़कों का ग्रुप है और उसमें एक लड़का सीधा साधा चुपचाप खड़ा हुआ है और लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, तो चारों लड़के उसको कहेंगे कि यार ये तो गवार है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम वो भी स्टार्ट कर देगा लड़कियों को टीज करना. तो ये भी एक
कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे लड़कों में.
बहुत अच्छा पॉइंट रीटा ने.
ये लड़कों में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन किस पे, मतलब भाई वो ज्यादा सुंदर आ रही है, देखते कौन से तुम्हें अच्छा कमेंट मारता है. ये भी होता है बहुत ग्रुप्स में.
और या फिर ऐसे भी होता है कि चल देखते हैं कि तेरे कमेंट में कितना दम है, तेरे को कितना रिस्पांस देती है लड़की. ये भी बात आती है.
एक लड़का जो बिल्कुल सीधा होता है वो चार लड़कों का ग्रुप उसको भी बिगाड़ देता है इसी बात.
एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है वाली बात आ रही है यहाँ पर.
तो इसका मतलब कि लड़कों में ये है कि भाई ईव टीजिंग बिल्कुल फ्रिवलस रीजंस के लिए भी करते हैं.
हाँ.
और जब यही ईव टीजिंग भर जाती है तो ये एक किरण एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का रूप ले लेती है, क्योंकि ये शुरुआत होती है कॉलेज में.
और एक चीज और है हमारे इंडियन सोसाइटी में, मैंने जो देखा है नॉर्मली ईव टीजिंग फॉर गर्ल इट इज ईव टीजिंग फॉर बॉयज इट इज अ गेम.
For boys, it is a fun.
यही चीज जो है आगे चल के कल को वो लड़का और वो लड़कियाँ जब काम करने पे वर्क पे जाते हैं तो वही चीज एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का रूप ले लेती है. और जहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस और बिल्डअप होती हैं तो ये मोलेस्टेशन रेप एक बहुत भयानक रूप भी ले लेती है.
एक हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा केस भी है, राठौर केस. अगर हम ले तो राठौर केस में क्या है, ईव टीजिंग ही है. उसमें जो लड़की है उसके साथ ईव टीज किया उसने, तभी उस लड़की ने सुसाइड कमिट किया. तो यहाँ इस हद तक भी होता है हरासमेंट, विमेन हरासमेंट इस हद तक भी है कि ईव टीजिंग की वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया.
हम कहते हैं कि अगर तुम्हें ईव टीज करता है तो हमें सुसाइड कमेंट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को बताना चाहिए या किसी और के पास जाना चाहिए. तो पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें.
बिल्कुल सही कहा रीता, पर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है. और यस यू आर राइट कि कभी कभी पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस ही कहती है कि आप ना कुछ मत करिए, कंप्लेंट मत करिए. पर मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि देखिए देर आर लॉज अगेंस्ट ईव टीजिंग, जो शायद ईव टीजिंग के नाम से लॉ नहीं है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. और सेक्शन 298, 299 छेड़खानी के लिए इंडियन पिनल कोड में लॉज है जिनके अगेंस्ट हम जो ईव टीजर है उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको फाइन कर सकते हैं और काफी केसों में उनको जेल भी हो सकती है. और आप अगर FIR लॉज करते हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. पर लड़कियों को कदम उठाना चाहिए अगर वो चाहती हैं कि ये चीज सोसाइटी से बिल्कुल चली जाए. तो ये आपको आपके गवर्नमेंट ने लॉ में एक प्रोविजन दिया है आपके अपने बचाव के लिए कि आप ऐसा करें. पर अनफॉर्चुनेटली किरण केसेस लॉज होते नहीं हैं, पर अगर केसेस लॉज होने लगे और ईव टीजर्स को पता चले कि भाई हम ये करें तो हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो शायद ये चीज जो है ये कम हो जाए.
और जबकि आजकल क्योंकि हम लोग इस तरह की चीजों को, इस तरह के केसेस को लॉज नहीं करवाते हैं, FIR नहीं लॉज करवाते हैं, इसका एक जो बड़ा रिजल्ट निकल कर आ रहा है दिल्ली में, आजकल आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी हेडलाइंस में सुना होगा, पढ़ा होगा, ब्लेड मार का आतंक बढ़ा. तो ये सब वहीं से शुरू है, ईव टीजिंग से शुरू होती होती ये चीजें इतनी बड़ी हो जाती है कि हम एसिड फेंकते हैं लड़कियों पे. एटलीस्ट चार या पांच लड़कियों पर ब्लेड से हमला हो चुका है, उनके फेस पर कोई आता है बाइक से और मार के चला जाता है. तो ब्लेड मार का आतंक हुआ. तो ये सारी चीजें कहां से, ये ईव टीजिंग से आई हैं, ये सब चीजें वहीं से उभर उभर कर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चढ़ रही हैं. तो वी हैव टू अपोज फर्स्ट. तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा और हम लोगों को FIR लॉन्च करवानी होगी, पुलिस की सहायता लेनी होगी. नहीं करते हैं तो उनको फोर्सफुली हमसे उन्हें सहायता लेनी.
मेरा इस पे कहना है मैम, जो आप कह रहे हो ये भी एक वन साइडेड लव का केस था. वो लड़की ने प्रपोजल रिफ्यूज किया था लड़के का, तो उस लड़के ने
सोचा क्यों ना, सो मेनी गर्ल्स, फोर फाइव गर्ल्स.
हाँ, तो उसने वो लड़कियों से, क्या लड़कियां ऐसी हैं ऐसे मेरे, तो मैं लड़कियों से बदले लूंगा. ये भी यही केस था. तो जहाँ तक है वो भी एक फ्रस्ट्रेशन ही है.
ओके.
मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि ईव टीजिंग सिर्फ या कमेंट मारने से कोई रहा चल रहा है, उस पर कमेंट मार दिया ये हो गया. पर आज जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एवरी गर्ल इज़ कैरिंग अ फ़ोन और एवरी गर्ल को जब वो अप्रोच करना है तो वो हर लड़की को अप्रोच करता है उसके सेलफोन का, इसका सेलफोन का नंबर निकलवा दे, यू नो, उसको.
तो हाई टेक ईव टीजिंग हो रही है आजकल, है ना, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है.
लाइक इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँ कि फेसबुक, आजकल फेसबुक इज इट सो एट रेज. तो फेसबुक में भी अगर कोई हमें कुछ भी कमेंट करता है, कुछ भी अब्यूसिव है, कुछ भी बोलता है, अगर हमें वो मैटर अब्यूसिव लगता है तो वी कैन ब्लॉक द पर्सन, एंड व्हेन वी ब्लॉक द पर्सन वी फाइल अब्यूज रिपोर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन, तो उसका अकाउंट, उसकी ईमेल आईडी सब कुछ ब्लॉक हो जाती है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ईव टीजिंग इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको कमेंट पास कर दिया, इट्स इवन एट फोन्स, लड़के अपना फोन नंबर रेगुलरली एट सम इंटरवल चेंज करती रहती हैं, किसी लड़के ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया अपना फोन नंबर वो बंद कर देती हैं, वो फोन्स कैरी करना बंद कर देती हैं, सो दिस इज इवन अ प्रॉब्लम.
बहुत सारा डिस्कशन आज हमारे यहाँ स्टूडियो में हुआ है ईव टीजिंग को लेके, और नीता मैम मुझे लगता है कि हमारी बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन ये हुई है और बहुत सारी चीजें उभर कर आई हैं, जैसे कि आप अपने स्पीड डायल में नंबर्स रखिए जो कि इमरजेंसी नंबर्स हैं, आप आसपास के लोगों को भी बुला सकते हैं हेल्प के लिए, अपने पेरेंट्स से ज्यादा ज्यादा बात करें और इग्नोरेंस की एक हद बना के रखें, एक हद के बाद इग्नोरेंस को तोड़ें, रिएक्ट करना सीखें, FIR लॉज करवाएं, अगर आपको जहां पे सीरियस केस लग रहा है वहां पर अपने पेरेंट्स को जरूर कहें, कोई ना कोई एक्शन जरूर लें और पुलिस की सहायता जरूर लें, और अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको हेल्प आउट नहीं कर रही है, देयर आर सो मेनी वेज आप FIR लॉज करवा सकते हैं,
और आप अपने कॉलेज, ऑफिस, स्कूल, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ की अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करिए, वहाँ पे उनको बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, एंड आई एम श्योर दैट दे विल हेल्प यू. और दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ भी आपको लगता है कि आप एक अकेले रास्ते पे जा रहे हैं और आपको रेगुलरली कोई छेड़ता है,
फॉलो कर रहा है,
कोई फॉलो करता है, तो मेक अ ग्रुप एंड गो. सी अल्टीमेटली हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, चाहे रीजंस कितने ही हो ईव टीजिंग के, पर हमें अपनी प्रोटेक्शन अपनी
खुद करनी है.
हाँ, अपने को सेफ रखना हमारा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, और यही चीज हमें स्प्रेड करनी है किरण, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर.
है हमें यहाँ पे स्प्रेड करनी है, और ये तीन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पुट करे हैं, और आपके सवालों के जो जवाब हैं उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ दिए हैं, और मैं चाहूंगी कि जो भी आज हमारा डिस्कशन का मकसद रहा है वो जरूर लोगों तक पहुंचे, और जितनी भी लड़कियां हैं वो जरूर इन चीजों से अवेयर हो जाएं, और ईव टीजिंग को एटलीस्ट कम करने के लिए जो भी मुमकिन कदम है उन्हें जरूर उठाएं.
एंड आई थिंक वी शुड टेल आवर लिसनर्स दैट उनको कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो इस बात से, या उनको कोई और जानकारी चाहिए, या किसी और बात पे इसी टॉपिक में डिस्कस करने की उन्हें जरूरत है, तो वो जरूर हमें कॉल करें.
कॉल करें, और हमारा नंबर है 8010781078. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 8010781078 है हमारा नंबर. आप यहाँ पर कोई भी हमें मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे रिगार्डिंग दिस, हम नीता मैम को से जरूर ट्रांसफर करेंगे, आपकी काउंसलिंग यहाँ पर हो सकती है, और जो भी हमारा मकसद है उसे प्लीज एक्सेप्ट करें और इस चीज को कम करने में हम लोगों की मदद करें. RMR इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और इसीलिए डिस्कशन जो है यहाँ पर हेल्प की गई है. नीता मैम इतनी दूर से आई हैं हमारे साथ, आपका हमारे स्टूडियो में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
इट्स अ प्लेजर किरण, और सबसे ज्यादा थैंक यू तो हमें हमारे यंग फ्रेंड से करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें बताया है
लड़कियों के मोस्टली परसेप्शन जो है इन्होंने यहाँ पे पुट करी दी,
बहुत अच्छे से पुट करे.
जी बिल्कुल. तो शिंजनी, नेहा और रीटा, आप का भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और गर्ल्स परसेप्शन को यहाँ पे रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं फिर से आऊंगी लेकर नीता मैम के साथ बॉयज परसेप्शन, लेकिन अभी फिलहाल आप सुनिए क्या, रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.